Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
अच्छा, तुम्हारे तोते ने पूछा है, वो भी मुक्त होना चाहता है। उसने पूछा है, इसलिए हमने आपसे पूछा कि उसके लिए उपाय क्या है। जैसे उसने ये प्रश्न किया, तोते का प्रश्न, किसका प्रश्न? तोते का प्रश्न। जैसे उसने तोते का प्रश्न किया, जिज्ञासु ने, महात्मा तो बेहोश होके गिर गए। महात्मा तो, उनको तो बेहोशी हो गई। अब तो वो घबरा गया, ये क्या हुआ? हमने अपना प्रश्न पूछा तो महात्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उस तोते का प्रश्न पूछा तो महात्मा बेहोश हो गए। हाय भगवान, बड़ा अपराध हो गया। इससे अच्छा तो प्रश्न ही नहीं करता तो ठीक था, एक महात्मा बेहोश हो गया। दौड़ के गया, पानी लाया, उस महात्मा के मुख में डाला, हवा किया, पंखा करने लग गया। अनेक उपाय करता है लेकिन महात्मा को होश ही नहीं आ रहा है। अंत में कहा कि अब क्या करें, लगता है महात्मा की यह नियति है। प्रारब्ध ही ऐसा था कि काकतताली यह न्याय हो गया कि मैंने प्रश्न करना, उनका प्रारब्ध समाप्त होना, यही हो गया लगता है। इसी को काकतताली यह न्याय, बात समझ गया? बेल पका हुआ था, अब बेल देखा, पेड़ में बेल का एक फल लगा हुआ था, उसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, नहीं टूट रहा था, नीचे नहीं गिर रहा था बेल, फल। मन ही मन सोच रहा था कि इस फल को मैं कैसे तोड़ूं। इतने में एक संयोग था, वो पूरा पक गया था। वो अपने डंठल से वो छुटने की तैयारी थी, उतनी समय में काग आके उसमें बैठ गया, उस शाखा में। उसके काग के बैठते ही झटका लगा तो बेल फट नीचे गिर गया। तो उसने कहा कि बेल तोड़ना हो तो काग को बुलाओ, क्योंकि काग ही बेल तोड़ सकता है, और कोई नहीं तोड़ सकते। और काग का बेल तोड़ने से क्या संबंध है? वो तो काग यदि थोड़ी देर न बैठता, एक दो घंटे में तो बेल आप ही गिर जाता। फिर एक संयोग है, काक ताली है, काग का बैठना, बेल का पकना, और उसके बैठते ही गिर जाना। तो उस सज्जन ने भी यही कहा कि ये काकत ताली या न्याय हो गया, मेरा प्रश्न करना और महात्मा का बेहोश होना। लगता है कि अब हमने उसको पानी भी पिलाया, कुछ नहीं हो रहा है, हवा भी की, कुछ नहीं हो रहा है, अनेक कोशिश की, मालिश भी की, कुछ नहीं हो रहा है। अब उसका प्रारब्ध समाप्त, इसी तरह ही उसको शरीर छूटना होगा। अब हमको यहां समय बर्बाद करना बेकार है, क्योंकि हमारा अपना प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया। दुनिया का प्रश्न, उस पोपट के प्रश्न का उत्तर का अब हमको क्या लेना देना है? छोड़ छाड़ के चला गया, वो घर पहुंच गया। तोते ने पूछा, क्या महात्मा के पास पहुंचे? बोले, हां। तुमने मुक्ति का उपाय खोज ली? बोले, हां, मिल गया हमको उपाय, युक्ति मिली है। क्या युक्ति है भाई? बोले, पंचकोश विवेक। उस पंचकोश विवेक से हम मुक्त हो सकते हैं। तोते के तो समझ में नहीं आई पंचकोश विवेक क्या है। बोले, दूसरी युक्ति, अनुभव व्यतिरेक युक्ति मिल गई हमको। तोते को वो भी नहीं समझ में आई कि अनुभव व्यतिरिक्त क्या है। अच्छा, ये दो युक्तियों से तुम कुनी दो में से किसी का भी प्रयोग करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुम बड़े भाग्यशाली। अरे अरे, हमारे भी प्रश्न था, तुमने पूछा कि नहीं? हमने भी तो कहा था ना कि हमारी मुक्ति का भी कोई उपाय पूछ लो। अरे मूर्ख, तूने पता नहीं कैसा प्रश्न किया। हमारे प्रश्न का उत्तर मिला, जब चलने लगे तो तेरा प्रश्न भी हमको याद आ गया, तो हमने तेरे तरफ से भी प्रश्न रखा महात्मा के पास। हाँ हाँ बताओ बताओ क्या उत्तर मिला। बोले मूर्ख उत्तर क्या मिलना था, बड़ा अनर्थ हुआ। क्या हुआ? तो तेरा प्रश्न रखते ही महात्मा तो बेहोश हो गए, उठते ही नहीं है, लगता है कि वो अब दोबारे वो जीवन में बचने वाले नहीं, वापस आने वाले नहीं है। हमने उनको पानी पिलाया, दवा खिलाई, भोजन कराने की कोशिश की, मालिश किया, बहुत कुछ प्रयत्न किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ? अंत में हम हार गए और छोड़ छाड़ के आ गए, वहीं ऐसे हालत में छोड़ दिया। जब उसने तोते की तरफ सारी महात्मा की सारी कहानी सुनाई तो तोता भी बेहोश हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तोता भी बेहोश हो गया, पड़ गया बस। अब वो तोते के बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, पानी ले जाके उसके मुख में डालता है, दाना डालता है, मिर्ची लगाता है, ये करता है, हवा करता है, क्या क्या करता है, तोते को होश नहीं आ रहा है। अब हैरान हुआ तो पिंजरे से बाहर निकाला, ये तो अब मर जाएगा, क्या करें। पिंजरे से जब बाहर निकाला, खुले मैदान में ले जाकर रखा, हवा करने लगा, थोड़ी देर में ये तो मर गया करके अंदर गया, फिर उड़ के चला गया तोता। युक्ति किसको मिल गया? युक्ति लेने कौन गया था और युक्ति मिला किसको? हैं? तुम्हारी समस्या तो यही है, तुम बंधन में हो, परेशान हो, छटपटा रहे हो। महात्मा कहता है कि अरे थोड़ा सा नाटक तो करो बेहोशी का, तुमको पति छोड़ देगा, थोड़ा नाटक करो बेहोशी का तो पति छोड़ देगा, ये काम नहीं रही है, जा तू जहां जाना हो जा, तुम जरा नाटक करो तो पत्नी छोड़ देगी तुम्हें, ये अब काम की नहीं, काम का नहीं रहा ये, जा तुमको जहां जाना हो जाओ, हमारे तरफ से छूट है। श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी ने ये दृष्टांत दिया, हमारी समस्या यही है, हम फंसे हुए हैं, लेकिन फंसे हुए हैं ये बोध हो तब ना जो है मुक्ति के लिए प्रयत्न करोगे। पति पत्नी बच्चे घर मकान परिवार कुटुंब बंधु बांधव इस सबके बीच में बैठे हो, यही है जाल, एक दूसरे से तुम संबंधित हो, जुड़े हुए हो, बंधे हुए हो, यही है जाल, और यही जाल में फंसे हुए हो, लेकिन तुम्हें मैं फंसा हूं इन जाल के द्वारा फंसा हूं ये बोध नहीं है, तो नहीं है, तो इनसे छूटने का प्रयत्न नहीं कर रहे, इनसे निकलने का प्रयत्न नहीं करते आप। कुछ मित्रता करो, पंचतंत्र आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पंचतंत्र में एक कहानी आती है, एक बार एक पक्षी जाल में फंस गए, कुछ पक्षी जाल में फंस गए, उस जाल में से क्या करें, तो सारे पक्षी उस जाल के अंदर निरीह होकर बैठ गए। तो एक पक्षी को थोड़ा सा युक्ति आ गया, शायद पूर्व जन्म में कोई सन्यासी रहा हो, वेदांती रहा हो, है योग भ्रष्ट होकर पक्षी बन गया हो, संभव है, लेकिन पक्षी होने पर भी उसको मुक्ति की बचने की उपाय तो उसको पूर्व जन्म का थोड़ा संस्कार था, तो सब रोने लगे, उसने कहा कि तुम चिंता न करो, प्रयत्न करो तो तुम जाल में फंसने पर भी मुक्त हो सकते हो। बोले क्या प्रयत्न करें, पंचतंत्र की कहानी है, सब लोग जोर लगाओ, एक साथ उड़ने का कोशिश करो, जाल ही लेकर उड़ जाते हैं और क्या, और यही निरीह होकर बैठोगे तो बहेलिया आकर पकड़ लेगा और मार डालेगा सब, यहां से तो उड़ो कम से कम। तो उसकी बात सबने मानी, तो सब एक साथ उड़ने की कोशिश की, तो जाल ही लेकर उड़ गए। और बहुत दूर जाकर जंगल के बीच में एकांत में जाकर बैठ गए सब। अब फिर उस जाल से मुक्ति कैसे हो? कहते एक चूहा वहां घूम रहा था, पंचतंत्र की कहानी, बड़े मार्मिक है कहानी भी। उस पक्षी ने कहा, ये तुम क्या खोज रहे हो? बोले हम अपने दाना पानी खोज रहे हैं, कहीं फल फूल मिले, भूख लगी है, भोजन खोज रहे हैं। देखो पेड़ में क्या बढ़िया बढ़िया फल है। बोले क्या करे, पेड़ में फल तो है लेकिन हमको नहीं मिल रहा है फल। नीचे गिरे तब हम खाएं, पेड़ में हम चढ़ नहीं सकते। अरे देखो हम इस जाल में फंस गए, नहीं तो सब फल तुमको नीचे गिरा देते, बढ़िया बढ़िया पका हुआ फल तुम्हें गिरा देते नीचे, लेकिन करें क्या, हम फंसे हैं जाल में, उड़ ही नहीं सकते। एक काम करो, तुम इस जाल को अपने दांतों से काट डालो। तो धीरे धीरे जालों को तुम काट दो तो हम निकलेंगे बाहर, निकलेंगे तो फल ऊपर के बढ़िया बढ़िया पके हुए फल तुमको गिरा देंगे नीचे, खाना बड़े तृप्त होगी। बोले अच्छा ये तो आसान है। उसने सब जाल कर एक एक ग्रंथि को काटना शुरू किया चूहे ने, और जाल की जब ग्रंथि उसने काट दी तो जाल खुला हो गया। पक्षी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे उड़ने लगे, उड़ के चले गए। तो चूहा कहता है, अरे मित्र मैं तुम्हारा मदद किया तो मुझे फल देने की जो बात थी, बोले ले खाओ जितना खाना हो। पक्षियां गए और वहां बढ़िया बढ़िया फल थे नीचे गिरा दिया, चूहे को भी भोजन मिल गया और पक्षी भी मुक्त हो गए। ये सन्यासी चूहे से कम नहीं है, लेकिन करे क्या, ये जाल काटने के लिए तो सन्यासी आते हैं, कुतरने के लिए तो आते हैं सन्यासी महात्मा लोग। ये जाल बड़ा विचित्र है, लेकिन एक बात ख्याल रखना, भगवान ने कहा कि मेरा मैंने बनाया और मेरा जो फैला हुआ है वह जाल है, इस जाल के अंदर सब फंसे हुए हो और उसी जाल के अंदर तुम आनंद में हो तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है, है ना? मुझे कुछ कहना नहीं है। और उस जाल से तुम पीड़ित हो, व्यथित हो, उससे निकलना चाहते हो, तो उसके लिए फिर और कोई उपाय नहीं है। मेरे जाल से तुमको मुक्त होना होगा तो मेरे ही शरण में आना पड़ेगा। ये गीता का श्लोक है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्य। गुणमयी, गुण शब्द का अर्थ संस्कृत में दूरी होता है, और जब रस्सी से बना हुआ सब जाल रस्सीमय है, गुण से बना हुआ जाल गुणमय है, धागे से बनाया हुआ जाल धागामय है, तंतु से बनाया हुआ जाल तंतुमय है, इसी प्रकार से गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी, डोरी, धागा, और उसी से जाल बुनते हैं। इसी तरह गुण शब्द का अर्थ होता है तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुणमयी, गुण से युक्त, तमोगुण से युक्त, रजोगुण से युक्त, सत्वगुण से युक्त, गुणमयी त्रिगुणात्मिका, एकबद्धम द्विबद्धम सुबद्धम भवती नीति है। रस्सी में एक बाट हो तो थोड़ा और मजबूत, उस एक के साथ दूसरे बाट कर लो तो और ज्यादा मजबूत, दूसरे से तीसरा बाट कर लो तो और भी ज्यादा मजबूत। इसलिए मजबूत रस्सी खोजना हो तो त्रिवट वाले रस्सी को खोज दे। यही तो ब्रह्मजाल बड़ा विचित्र है, माया जाल बड़ा विचित्र है। ये त्रिवटात्मक रस्सी से बना हुआ ये जाल, ये साधारण प्रयत्न से ये जाल कटने वाला नहीं है। तो माम ये वही ये प्रपद्यंती माया में ताम तरंती थे, उसके जाल है, उसका बनाया हुआ है और उस जाल में हम फंस गए हैं और इससे मुक्त होना चाहते हैं तो फिर उसी के शरण में जाओ। एकेकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्ते सदेवः। इसी व्यष्टि क्षेत्र में आधार बनाकर वो अनेक जाल बुनता है। इसलिए तो भगवान ने गीता में और दूसरी जगह कह दिया है, परस्परम भावयंता, तुम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते हो, ये जाल में एक दूसरे से बंधे हुए हो। तो जैसे बंधन एक दूसरे से मिलकर हुआ है, इसी तरह मुक्ति के लिए भी तुम प्रयत्न करो। सब बने हुए, सब एक दूसरे से संबंधित, सापेक्ष है, हर पदार्थ सापेक्षित है, एक की अपेक्षा से दूसरे पदार्थ है। किसी भी पदार्थ से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये नहीं तुम नहीं कह पाओगे। संसार में, संसार से बाहर निकल लोगे तो फिर तुम ये कह सकते हो कि मुझे इन पदार्थों से कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन संसार में हर पदार्थ से तुम्हारा संबंध है, जल से संबंध है, पृथ्वी से संबंध है, तेज से, आकाश से, वायु से, अहंकार से, पंचतन मात्राओं से। और उन पंचतन मात्रा को ग्रहण करने के लिए तुम्हारे पास ज्ञान इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय आदि ज्ञान इंद्रियां हैं। नहीं तो तुम्हारे पास घ्राण इंद्रिय आदि ज्ञान इंद्रियां न होते तो बाहर के शब्द आदि तन्मात्राएं विषय ग्रहण कैसे करते हो। तन्मात्राएं तो ग्रहण करने के लिए इंद्रियां हैं, अधिभूत हैं तो उसको ग्रहण करने के लिए तुम्हारे पास अध्यात्म है। अधिभूत और अध्यात्म हैं तो दोनों को उपकार करने के लिए अधिदैव है। आंख न हो तो फूल क्या देखोगे, प्रकाश न हो तो फूल क्या देखोगे, फूल ही नहीं हो तो फिर देखोगे क्या, दृश्य न हो तो चक्षु का क्या प्रयोजन, प्रकाश न हो तो फिर दृश्य का क्या प्रयोजन। अध्यात्म अधिदेव और अधिभूतों का ये परस्पर संबंध इसी को इस मंत्र के द्वारा जाल के रूप में व्याख्या की गई है। यही है एक जाल, एकेकम जालम बहुधा विकुर्वन अस्मिन् क्षेत्रे व्यष्ट्यात्मक क्षेत्रे और समस्त्यात्मक क्षेत्रे। कहते हमने पढ़ा था जब शास्त्री पढ़ते थे उस समय अनिवार्य एक हिंदी का पेपर भी था, तो उस 10 नंबर के अनिवार्य हिंदी पेपर में हमने एक कहानी एक पढ़ा था, लेख पढ़ा था, चाइना के जो साम्यवाद पर आक्षेप किया हुआ लेख था वो, तो हमको याद आ गया इसलिए बता रहे हैं। कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति खेत में चला गया, बरसात के समय में खेत में चला गया, पानी भरा हुआ था, फसल थी खेत में धान, तो उस पानी में बहुत से मेंढक देखा उसने, मेंढकों को देखा, टर्र टर्र कर रहे हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, काले भी हैं, पीले भी हैं। तो उसने कहा कि खेत में इन मेंढक ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, इसका कुछ उपयोग करना चाहिए, इसको पकड़ो और इसके कुछ मिर्ची मसाला कुछ लगाओ तो बढ़िया भोजन तैयार हो जाएगा, और इसको फिर सप्लाई करो बाहर अमेरिका यूरोप की तरफ तो खूब डॉलर भी आ जाएगा। दिमाग में आ गया उसका, अन्यथा तो उस मेंढक की क्या उपयोगिता है, मनुष्य के लिए है कोई उपयोगिता? इस तरह ये बेकार जाने वाले मेंढकों को पकड़ के मिर्ची मसाला डला के डालकर बढ़िया भोजन तैयार कर डिब्बा बंद करो, विदेश भेजो, डॉलर आएगा, राष्ट्र के राजस्व है, रेमिटेंस आ जाएगा, राजस्व आ जाएगा। ले जाके कैबिनेट में उसने प्रस्ताव रखा, हम गए थे खेत में, वो एक खेत, छोटा सा खेत में हजारों मेंढक थे, और हमारे चाइना में कितने खेत है, कितने मेंढक होंगे, उन सबको पकड़कर इस ढंग से प्रशोधन करके सप्लाई करो तो कितना डॉलर आ जाएगा भाई, राजस्व आ जाएगा। बोले तुम ठीक कह रहे हो, यही किया जाए, कैबिनेट ने पास किया और पकड़ने लगे मेंढक, खोला गया फैक्ट्री और खूब मसाला मिर्ची लगाया गया, डिब्बा बंद किया गया और भेज दिया गया, डॉलर राजस्व आ गया, क्या बढ़िया आइडिया है। परंतु आश्चर्य की बात कहते हैं, कुछ वर्षों के बाद जब से उस मेंढक पकड़ने लग गए, धीरे धीरे फसल कम होने लग गई, उत्पादन कम, फसल कम होने लग गया। बहुत चिंतित हो गए, अब क्या करें। तो बाद में पता चला कि फसल के जो कीटाणु, विषालु कीटाणु थे, फसल को खाने वाले, नुकसान करने वाले, ये खेत में घूमने वाले मेंढक उन विषैले कीटाणुओं को खा खा कर वो जी रहे थे। उसके चलते खेती व फसल सुरक्षित थी, और उन सब मेंढक को मार दिया तो वो विषैले कीटाणु को मारने वाला अब कोई रहा नहीं, तो फसल खत्म हो गया। तब फिर दूसरे को दिमाग में आ गया कि ये पुनः खेत में मेंढक को भरा जाए। सब खेत में पूरा मेंढक लेकर डाला जाए, मेंढक को भरा जाए, तब जाकर खेत की फसल की उत्पादन बढ़ेगा। अब क्या करें कि वहां तो अब मेंढक सब खत्म हो गए। बोले रशिया से ले आओ, तो रूस से मेंढक आयात करके चाइना ने अपने खेत में डाला। मेंढक का तुम्हारे जीवन में कितना उपकार है, बना हुआ है भाई। तुम ये नहीं कहते हो कि मेंढक से मेरा कोई संबंध नहीं है, नहीं कह सकते हो। कितना बढ़िया संबंध है, तुम ये नहीं कह सकते मेंढक से कोई संबंध नहीं है। हर चीज का विश्व सृष्टि में उपयोगी है, और इस उपयोगिता को ही जाल कहा गया है। बात समझ गए कि नहीं। हर प्राणी को, हर मनुष्य को, संसार के हर पदार्थ की उपयोगिता है। उस उपयोगिता का नाम ही जाल है, क्योंकि एक दूसरे से संबंध हो। आप यूं कहोगे कि जहर बेकार बनाया परमात्मा ने, आपको तो यही लगेगा ना। जहर का क्या काम है, क्यों बनाया परमात्मा ने जहर। सारे प्राणियों को सृष्टि किया है, तो फिर जहर क्यों बनाया है। जहर की उपयोगिता है। अगर तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी तो फिर कहां जाओगे। बड़ी उपयोगिता है उसको। और की तो बात छोड़ दो, होम्योपैथिक में जितनी भी दवाइयां हैं, अच्छी से अच्छी दवाइयां, वो सर्प के विष से ही तैयार किया जाता है। उसकी उपयोगिता, प्रशोधन करने नहीं जानते हो इसलिए आत्महत्या होती है। उसका यदि प्रशोधन करके, कहां किस तरह प्रशोधन करके क्या उपयोग लिया जाता है, यदि जहर ही नहीं होता तो होम्योपैथिक की औषधि कैसे बनाते तुम। इसलिए तो नीतिकार ने कहा है, अमंत्राक्षरा नास्ति, जितनी भी का से लेकर क्षत्रज्ञ पर्यंत अक्षर हैं, एक एक अक्षर में मंत्र शक्ति है, दिव्य मंत्र शक्ति है, दिव्याति दिव्य मंत्र शक्ति है। लेकिन उन किस अक्षर को किस अक्षर के साथ विनियोग करने पर कौन सा मंत्र तैयार होकर कौन सा शक्ति पैदा होता है, ये योजन करने वाला, संयोजन करने वाला व्यक्ति की कमी है, मंत्रों की कमी नहीं है। बिना ये संसार में जितनी भी घास है, वनस्पति हैं, हर घास, हर वनस्पति हमारे औषधि के लिए पैदा हुए हैं, परमात्मा ने सृष्टि की है। किस रोग के लिए कौन सी वनस्पति है, बिना कारण परमात्मा ने घासों को पैदा नहीं किया। तुम्हें तो लगता है कि ये घास किस प्रयोजन से सृष्टि में आया है, इनका क्या प्रयोजन है। लेकिन एक एक वनस्पति, एक एक घास प्राणियों के लिए औषधि है, जीवन का आधार है। लेकिन उसको किस रोग में कौन सी औषधि का विनियोग है, पहचानने वाले की कमी है। औषधि की कमी नहीं है, पहचानने वाले की कमी है। इसी तरह नीतिकार में आगे कहा, अयोग्य पुरुषो नास्ति, संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सब योग्य हैं। अपने अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति योग्य है, परंतु योजका तत्र दुर्लभः, उसकी योग्यता को अध्ययन करके, उसके योग्यता को जानकर, जिसकी जहां जो योग्यता है उसको वहीं विनियोग करने वाला व्यक्ति की कमी है। योग्यता को पहचान कर उसके योग्यता अनुसार उसका प्रयोग करने वाले की कमी है। नौकर रखो रसोई के लिए, कोई तो बड़ा योग्य रसोईया आता है कि बढ़िया भोजन बनाता है, कोई ऐसे अनाड़ी आ जाते हैं कि भोजन बनाने नहीं जाते। तो तुम कहोगे कि ये तो अयोग्य है। अरे बाबा, किस में अयोग्य है? भोजन में अयोग्य है तो कपड़ा धोने में तो योग्य है। वो सर्वथा अयोग्य तो नहीं है, भोजन नहीं बना सकता है तो अरे झाड़ू पोछा तो लगा सकता है ना, ड्राइविंग करने वाला ड्राइविंग में लगाओ, झाड़ू पोछा करने वाले को झाड़ू पोछा में लगाओ, लेखापढ़ी करने वाले को लेखापढ़ी में लगाओ, भोजन बनाने को भोजन में लगाओ। योज का तत्र दुर्लभ, संसार में यदि दुर्लभ है तो योजक की दुर्लभ है, उसकी योग्यता को पहचान कर उसके विनियोग करने की व्यक्ति की दुर्लभ है। अक्षरों को किस अक्षर के साथ किस अक्षर को जोड़ने से कौन सा मंत्र और कौन सी शक्ति पैदा होती है, ये जानने वाले व्यक्ति की कमी है। तो बंधन तो जहां भी मिल जाएगा, मुक्ति के लिए उपाय बताने वाले की कमी है। फंसे हुए तो जो भी है, सभी फंसे हुए हैं, मुक्ति दिला देने वाला व्यक्ति की कमी है, यहां उपाय बता देने की कमी है। उपाय है, एकेकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरति स देवः। वो परमात्मा जहां उसने जाल बनाया वहीं उसने उस जाल को संहार भी करता है, इसलिए उपनिषद ने परमात्मा को अनेक रूप में उपमित किया है। उर्णनाभि मकड़ी, ये मंत्र मकड़ी के साथ उपमित करते हैं परमात्मा को। मकड़ी की एक विशेषता है, अपने ही मुख से अपने ही शरीर के अंदर से धागे को निकलता है वो मकड़ी, उस धागे को इधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर जोड़ती हुई एक जाल तैयार करता है और आराम से उस जाल में खुद बिना फंसे रहता है। लेकिन उसके द्वारा तैयार किए हुए जाल में मच्छर और मक्खियां फंस जाती हैं, अन्य छोटे छोटे क्षुद्र जीव फंस जाते हैं, वो खुद फंसता नहीं है। और जब उसको लगता है कि अब प्रयोजन पूरा हो गया, फंसे हुए मक्खियों मक्खियों को और मच्छरों को वहीं बैठे बैठे खाता रहता है, जब उसको लगता है कि अब यह खतरा है तो फिर वो संहारती अपने जालों को फटाफट समेट लेता है, फंसता नहीं है। तो जाल तो वो भी बनाता है, हम भी बनाते हैं, हम अपने जाल बनाते हैं, वो अपना जाल बनाता है, हम अपने जाल में फंस जाते हैं। उसका जाल हमें फंसाने के लिए बनाया नहीं है, वो जो जाल बनाता है हमें फंसाने के लिए नहीं, हमारा उपकार करने के लिए बनाया था उसने, हमारे उपकार के लिए बनाया था उसने जाल। परंतु हम उस उपकार के पक्ष को नहीं जानकर उस पर मोह करके हम उसी में फंस जाते हैं। पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, दो प्रकार की सृष्टि है जगत में, एक ईश्वर सृष्टि है और दूसरा जीव सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि किसी भी जीव के लिए दुख का कारण नहीं है, ईश्वर सृष्टि जीव के लिए सुख का भी कारण नहीं है। ईश्वर की सृष्टि तो निरपेक्ष है, सुख और दुख का कारण क्या है तो बोले जीव की अपनी सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि में वो अपनी एक नई कल्पना कर लेता है, तो उसके द्वारा आरोपित उसके द्वारा कल्पित सृष्टि ही उसी के लिए सुख और दुख का कारण है, ईश्वर सृष्टि सुख दुख का कारण नहीं है। इस बात को कल और स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।